आज हम सभी का परम सौभाग्य है आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी उर्मिला दीदी जी हम सबके बीच मौजूद हैं। हम सबका ये परम सौभाग्य हम सभी करतल ध्वनि के साथ आदरणीय दीदी जी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दीदी जी सन 1981 में विद्यालय से जुड़ी और 1985 से समर्पित होकर अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। आप संयुक्त संपादिका ज्ञानामृत मासिक पत्रिका व सह संपादिका मासिक हरियाली पत्रिका, आपने अनेकानेक आध्यात्मिक अभियानों में भारत के विभिन्न प्रांतों में सेवाएं दी हैं। आप बहुत अच्छी लेखिका भी हैं, सरल स्वभाव एवं सरल व्यक्तित्व की धनी। आदरणीय दीदी जी, आपके सरल व्यक्तित्व को देखकर लगता है कि वो खुद नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, वो खुद नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की। महकना महकाना तो काम है खुशबू का, खुशबू नहीं मोहताज होती कर्दानों की। आदरणीय दीदी जी से हम सुनेंगे शुभ चिंतक के द्वारा शुभ चिंतक स्थिति कैसे बने, शुभ चिंतन के द्वारा शुभ चिंतक स्थिति कैसे बने। आदरणीय दीदी जी,
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत ही सुंदर विषय पे अभी हम चिंतन करेंगे। मैं अपने सामने शुभ चिंतक मणियों को देख रही हूं, क्योंकि दुनिया में दो प्रकार की मणियां हैं। एक है चिंता मणियां, निरंतर चिंताग्रस्त, भले उनके पास साधन भी हैं, धन भी है, व्यक्ति भी हैं, लेकिन ये सब चीजें चिंता मिटाती नहीं है, लेकिन चिंता को बढ़ा देती है, क्योंकि व्यक्तियों में स्वार्थ भाव है। और जो वस्तु वैभव धन साधन है वो अल्पकाल का सुख तो देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर चिंताग्रस्त भी कर देते हैं। थोड़ा सुख, थोड़ी खुशी, थोड़ी प्राप्ति, पर चिंता अधिक। और दूसरी तरफ है प्यारे बाबा की शुभ चिंतक मणियां, जो अपनी किरणें विश्व में फैला रही हैं। जैसे सूर्य अपनी किरणें फैला के अंधकार को दूर करता है, ऐसे हम सब शुभ चिंतन की किरणें, शुभ चिंतन की रोशनी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा रही हैं। और इन किरणों को पाकर के वो चिंता मणियां कुछ राहत महसूस करती हैं। उन्हें लगता है कि पहचान नहीं पा रही, इसलिए कई लोग कहते भी हैं कि कोई आध्यात्मिक शक्ति गुप्त रूप में काम कर रही है। कहां कर रही है, कैसे कर रही है, वो तो समय आने पे पूरा पूरा स्पष्ट होगा, लेकिन हमारी शुभ चिंतन की किरणें उन तक पहुंच अवश्य रही हैं, उनको जागृत भी कर रही हैं, मदद भी कर रही हैं और अपनी ओर आकर्षित भी कर रही हैं। शुभ चिंतन शुभ चिंतक बनने का आधार है। पुराने जमाने में आपको याद होगा, लोग पत्र लिखा करते थे, कार्ड, पोस्ट कार्ड, तो उसके नीचे लिखा रहता था आपका शुभ चिंतक, आपका शुभ आकांक्षी। वो तो केवल लिखने मात्र होता था, लेकिन बाबा हम बच्चों को सही अर्थों में शुभ चिंतक बनाते हैं। सर्व के शुभ चिंतक, निस्वार्थ शुभ चिंतक और सदाकाल के लिए शुभ चिंतक, इसका आधार है निरंतर शुभ चिंतन। क्योंकि जैसे रात और दिन इकट्ठे नहीं होते, अंधकार और प्रकाश इकट्ठा नहीं होता, उसी तरह से समर्थ चिंतन और व्यर्थ चिंतन भी कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। अगर प्रचिंतन है, व्यर्थ चिंतन है, नेगेटिव चिंतन है, तो शुभ चिंतन या पॉजिटिव चिंतन हो ही नहीं सकता। और इसके लिए बाबा कहते हैं, अमृत वेले से जब अपनी दिनचर्या का प्रारंभ करते हो तब से नोट करो। क्योंकि बाबा ने दिनचर्या का प्रारंभ करना सिखाया है, अमृत वेले कैसे शुभ चिंतन करना वो हम बच्चों को सिखाया। अमृत वेला दिन की शुरुआत है, स्तोत्र प्रधान समय है, अमृत तुल्य समय है, वरदानी समय है, बाबा का भी सहयोग है। तो उस समय का हमारा जो संकल्प होगा, दिन भर की दिनचर्या भी वैसी ही चलेगी। जैसे कहते हैं ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची, तो हम भी अमृत वेले जो संकल्प करेंगे उसी के अनुसार हमारी दिन भर की दिनचर्या रूपी सृष्टि रची जाएगी। तो अमृत वेले क्या संकल्प करना है? बाबा ने बताया कि आप अमृत वेले बालक बन करके बाप के सामने आते हो और बाप को गुड मॉर्निंग करते हो। तो जब आप बाप को गुड मॉर्निंग करते हो तो बाबा भी रेस्पोंड करते हैं, और रेस्पोंड में क्या कहते हैं? बालक सो मालिक बच्चे, बाप के भी सरताज बच्चे। तो ये अमृत वेले का पहला समर्थ संकल्प है। और पहला वरदान बाबा क्या देते हैं? समान भाव। इस वरदान में बाकी सारे वरदान समाये हुए हैं, लेकिन बाबा ने एक शर्त रखी, इस वरदान का अनुभव कौन कर पाएंगे? वो बच्चे जिनका संकल्प भी बाबा है और जिनका संसार भी बाबा है। अर्थात जो एक व्रता है, एक बल एक भरोसे है, एक रस है, पिता व्रता है, बेहद की वैराग वृत्ति वाले, सांसारिक वस्तु व्यक्ति वैभव से लगाव मुक्त है। बाबा ने कहा अमृत वेले मिलन मनाने वाले बच्चों में तीन प्रकार के बच्चे हैं, और उसी के अनुसार उनकी शुभ चिंतन की स्थिति निर्धारित होती है। पहले बच्चे हैं जो समान स्थिति में बाप से मिलन मनाते हैं। मैं बाप समान हूँ, बाप के गुण सो मेरे गुण, बाप की शक्तियां सो मेरी शक्तियां, और बाप के साथ बैठ करके बाप के कर्तव्य में मददगार बनते हैं, ये पहली प्रकार के बच्चे हैं। दूसरी प्रकार के बच्चे समान स्थिति में तो नहीं, लेकिन बाप के सामने बैठते हैं और सामने बैठ करके बाप से गुण और शक्तियां ग्रहण करते हैं। जैसे बाबा से लाइट माइट आ रही है और मुझ में भरती जा रही है। पहले वाले बच्चे तो भरे हुए वो समान स्थिति में, और दूसरे बच्चे अभी अपने में भर रहे, ये सामने बैठ के भरने वाले बच्चे हैं। और जो तीसरे बच्चे हैं, बाबा ने कहा उनकी तो लीला ही न्यारी है, वो तो बहुरूपी हैं, कभी कैसा रूप कभी कैसा रूप। अभी अभी देखो तो अधिकारी बन के बैठे हैं, और अभी अभी देखो तो भिखारी बन करके बैठे हैं। रूप बदलते रहते हैं। तो इन तीनों बच्चों की दिन भर की दिनचर्या भी तीन प्रकार की हो जाती है। जो पहले प्रकार के बच्चे हैं उनका शुभ चिंतन नेचुरल चलता है, उनके मन और बुद्धि शुभ चिंतन की पटरी पर अपने आप चलते रहते हैं, मेहनत नहीं करनी पड़ती, चेकिंग नहीं करनी पड़ती, अटेंशन नहीं देना पड़ता, संस्कार बन गया है। देखना भी शुभ, सुनना भी शुभ, बोलना भी शुभ, करना भी शुभ, स्वप्न भी शुभ, सब कुछ शुभ, ये पहली प्रकार के बच्चे हैं। दूसरी प्रकार के बच्चे, उन्हें अटेंशन देना पड़ता है, मन बुद्धि शुभ चिंतन की पटरी से उतरते हैं फिर चढ़ाते हैं, अटेंशन देना पड़ता है, अटेंशन आवश्यक है। और तीसरी प्रकार के बच्चे हैं, बाबा ने कहा वो तो योद्धे हैं, युद्ध करते रहते हैं, कभी विजयी कभी दिल शिकस्त, कभी शुभ चिंतन कभी व्यर्थ चिंतन, फिर अंदर ही अंदर अपने आप से संघर्ष करते हैं। तो बाबा ने कहा अगर शुभ चिंतक बनना है तो अमृत वेले से बाबा से समान भव का वरदान लेंगे तो सारा दिन मन बुद्धि शुभ चिंतन की पटरी पर ऑटोमेटिक चलेगी। शुभ चिंतन के लिए अगला कदम है स्वचिंतन। स्वचिंतन क्या है? स्व का मतलब है आत्मा। मैं कौन? प्यारे बाबा ने ये पहेली हमें समझाई है, मैं आदि अनादि स्वरूप में कैसी आत्मा। अगर अनादि स्वरूप की बात करें तो बाप समान, मास्टर शांति के सागर, मास्टर आनंद के सागर, मास्टर प्रेम के सागर। आदि रूप की बात करें तो महान आत्मा, देव आत्मा, पूज्य आत्मा, विजयी आत्मा, सफलता मुहूर्त आत्मा। और वर्तमान ब्राह्मण रूप की बात करें तो विश्व परिवर्तक आत्मा, असंभव को संभव करने वाली आत्मा। तो बाबा ने कहा ये स्वचिंतन है। लेकिन अगर कोई ये चिंतन करता है मैं तो कमजोर हूं, मैं सफलता मूर्त नहीं हूं, मैं माया जीत नहीं हूं, मैं विक्रमा जीत भी नहीं हूं, मैं तो पुरुषार्थी हूं, तो बाबा ने कहा ये स्वचिंतन नहीं है, ये माया का चिंतन है, देह अभिमान का चिंतन है, कमजोरी का चिंतन है। संगम योगी ब्राह्मण आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान, वो कमजोरी का चिंतन नहीं कर सकती। कमजोरी का चिंतन ब्राह्मण आत्मा का चिंतन नहीं। तो जैसे हमारी दादी जानकी हमें तीन शब्द याद कराया करती थी, मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है, ये है स्वचिंतन। मुझे क्या करना है और मेरे साथ क्या हो रहा है, इन दो शब्दों के आधार से दो प्रकार के जीवन बनते हैं। ज्ञान ये कहता है कि हमें ये नहीं सोचना कि मेरे साथ क्या हो रहा है, हमें इस बात पे अटेंशन देना है कि मुझे क्या करना है। जब हम इस बात पे अटेंशन देते हैं कि मुझे क्या करना है, तो मेरे साथ जो हो रहा है वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। जैसे कुछ रोगियों पे, मनोरोगियों पे और कुछ कैदियों पे एक्सपेरिमेंट किया गया, तो कैदियों ने क्या सुनाया कि देखो हमारे साथ क्या क्या हुआ, समाज में हमें सम्मान नहीं मिला, सहयोग नहीं मिला, धोखा किया गया हमारे साथ, हमारी भावनाओं को नहीं समझा गया, तो हमें क्रोध आ गया, हमने अपराध कर लिया। मनोरोगियों ने भी यही कहा, घर के लोगों ने हमें धोखा दिया, हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ, हमारे साथ भेदभाव किया गया, इसलिए मनोरोगी बन गए। तो उन लोगों ने इस बात पे ध्यान अधिक दिया कि हमारे साथ क्या हो रहा, लेकिन जिन्होंने इतिहास रचा, जो उन्नति के शिखर पे पहुंचे, उनसे पूछा गया भाई तुम्हारी मनोभावना क्या थी, तो उन्होंने कहा कि हमारी मनोभावना यही थी कि हमें कुछ कर गुजरना है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, समाज का ऋण चुकाना है, अपने सपने को पूरा करना है, जान की बाजी लगाकर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो उनके केंद्र में ये था कि हमें अच्छे कर्म करने हैं और उन्होंने किए। तो जो लोग ये सोचते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, वो जिंदगी की कहानी के खलनायक बन जाते हैं, और जो ये सोचते हैं कि हमको क्या करना है, वो जिंदगी की कहानी के नायक बन जाते हैं। जैसे स्टूडेंट्स पेपर देते हैं, तो परीक्षक जब उस पेपर को चेक करता है, तो वो ये नहीं देखता कि स्टूडेंट के साथ क्या हो रहा था, वो तो ये देखता है कि स्टूडेंट ने क्या लिखा है, उसके आधार पे नंबर देता है। और धर्मराज भी जब हमारे पेपर चेक करेगा, तो कभी ये चेक नहीं करेगा कि आपके साथ क्या हुआ, वो ये चेक करेगा कि आपने क्या क्या किया। तो हम करने वाली बात पे ध्यान दें, हमारे साथ क्या हुआ उसको इग्नोर कर दें। शुभ चिंतन के लिए हमें किस किस प्रकार का चिंतन करना है, बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान में रमण करो, सृष्टि के आदि मध्य अंत का जो रमणीक ज्ञान बाबा ने दिया, उसका चिंतन करो, मनन करो। जैसे दिखाते हैं कि विष्णु जी शेष सैया पे लेटे हुए हैं, बड़े हर्षित। लक्ष्मी जी पूछते हैं कि आप इतने हर्षित कैसे हैं, तो वो कहती हैं कि मैं गीता ज्ञान का चिंतन कर रहा हूं, गीता ज्ञान में रमण कर रहा हूं। तो ये गीता ज्ञान बड़ा सुखदायी और बड़ा शक्ति देने वाला है। तो केवल ज्ञान का स्मरण करना, पॉइंट्स रिपीट कर देना, लिख देना, वो नहीं, दिनचर्या में ज्ञान को यूज करना। जैसा समय, उसी ज्ञान के पॉइंट का स्वरूप बनना, उस ज्ञान के पॉइंट को कर्म में यूज करना, ये है स्वचिंतन। अगर हम स्वदर्शन चक्र घुमा रही हैं और उसका स्वरूप बन रही, हमें महसूस हो रहा है कि मैं ही सतयुग में थी, और वो सतयुगी स्वरूप एकदम स्पष्ट अनुभव हो रहा है, पूज्य स्वरूप एकदम स्पष्ट अनुभव हो रहा है, तो ये स्वचिंतन। ऐसे नहीं एक सेकंड में सारा चक्र पूरा हो गया, उस स्वरूप में टिकना, उसको अनुभव करना। या हम फरिश्ता सुदेवता स्थिति का अनुभव कर रहे हैं, डिटैच, एकदम न्यारा, उपराम, अनासक्त, अभी अभी फरिश्ता, अभी अभी देवता, तो अनुभूति करना, ये है स्वचिंतन। या हम किसी गुण के ऊपर अंदर ही अंदर विचार कर रहे हैं और उस गुण को धारण करने की युक्तियां अंदर ही अंदर रच रहे हैं, ये भी स्वचिंतन। प्यारे बाबा ने हमें जो शक्तियां दी हैं, उन शक्तियों को कैसे कार्य व्यवहार में यूज करना है। सहन शक्ति क्या है, धैर्य की शक्ति क्या है, धैर्य रखने से मुझे क्या क्या फायदे होते हैं, सहन करना कैसे शक्ति देता है, समाने की शक्ति से कैसे सेकंड में अशरीरी हो जाते हैं। तो इन सब बातों का दिनचर्या में अनुभव करना, ये है स्वचिंतन। तो जब हम ऐसा स्वचिंतन करते हैं तो परचिंतन का अंधकार भाग जाता है, व्यर्थ चिंतन नजदीक आ ही नहीं सकता, क्योंकि बुद्धि फ्री नहीं है, समय नहीं है। हर संकल्प शक्तिशाली, परचिंतन और व्यर्थ चिंतन से आत्मा कमजोर बन जाती है, और कमजोर आत्मा फिर किसी और को शक्ति क्या दे पाएगी, बल्कि वो तो औरों से शक्ति मांगने वाली बन जाएगी, किसी से प्रेम मांगेगी, किसी से सलाह मांगेगी, किसी से कोई ज्ञान की बात, उसकी क्लैरिटी मांगेगी। लेकिन जो आत्मा निरंतर समर्थ स्थिति में है, समर्थ संकल्पों में है, तो वो वास्तव में औरों के भी व्यर्थ को खत्म करने के निमित्त बन जाती। उसको देख करके अगर कोई व्यर्थ सोच रहा होगा उसको भी प्रेरणा आएगी कि नहीं, मुझे भी मन को शक्तिशाली बनाना है। तो बाबा ने कहा ये गीता ज्ञान का रमण बड़ा आनंद देने वाला है और इसका मनन करने से जो माखन निकलता है, खुशी रूपी माखन निकलता है, उसको खाएंगे तो शक्तिशाली बनेंगे और जो शक्तिशाली होता है उसको माया हिला नहीं सकती। माया हिलेगी लेकिन वो नहीं हिलेगा। इसकी यादगार दिखाई है शास्त्रों में, माया हिल गई लेकिन खुशी रूपी माखन खाने वाला प्रभुवत नहीं हिला। कौन है वो? वो हम सब हैं और यादगार है अंगद। रावण के दरबार में अंगद गया तो उसने अपना पांव जमा दिया कि जो मेरे पांव को हिला दे कोई रावण का दूत या रावण का दरबारी तो सीता आपकी। अब एक एक करके सारे महारथी आए लेकिन हिला नहीं सके, खुद हिल गए। और अंत में जब रावण आने लगा तो उन्होंने ऐसी बात कह दी कि वो भी आगे नहीं बढ़ सका। उन्होंने कहा मेरे पांव छूने से क्या होगा, पांव छूने हैं तो श्री राम के छुओ ताकि तुम्हारा उद्धार हो जाए। तो ये शक्ति कहां से आई? अकेला निहत्था और रावण का पूरा दरबार, ये शक्ति है ज्ञान के मनन से जो खुशी रूपी माखन मिलता है उसको खा करके मिलने वाली शक्ति। तो बाबा कहती हैं सारा दिन रचता और रचना के आदि मध्य अंत का जो ज्ञान है उसमें रमण करो, कभी किसी पॉइंट पे कभी किसी पॉइंट पे। इतना अथाह ज्ञान का खजाना दिया है बाबा ने, इतना खजाना कहीं भी नहीं और इतना ऊंचा ज्ञान कहीं भी नहीं। सारी दुनिया में चक्कर लगा लो, प्यारे बाबा की एक लाइन की बराबरी भी दुनिया का कोई ज्ञान कर नहीं सकता। तो इतना अथाह है हमारे पास है तो हम क्यों ना उसका सदुपयोग करें। फिर बाबा ने कहा कि चलते फिरते दुआएं देते रहो, ये भी शुभ चिंतन, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब आगे बढ़े, सबकी उन्नति हो, सब निरोगी बने, ये अंदर ही अंदर चलता रहे, मन को आदत पड़ जाए। प्रकृति को भी शुभ भावनाएं दो। हम चारों ओर प्रकृति को देखते हैं, हमारी पालनहार प्रकृति 5000 साल से हमारी पालना कर रही है, अन्न जल ऑक्सीजन सब कुछ प्रदान करती है, तो उसके प्रति भी कृतज्ञ भाव, आभार का भाव, ये भी शुभ चिंतन है। और आजकल हम देखते हैं दुनिया में जहां तहां हिंसा, दंगे, क्रूरता, अन्याय, रोग शोक कष्ट बढ़ते ही जा रहे हैं। और ये समाचार सुनकर के हम शुभ चिंतक आत्माओं को क्या करना है। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि जैसे दुनिया के लोग समाचार सुनते हैं, क्या आप लोग भी ऐसे ही समाचार सुनते हो? आपका समाचार सुनने का तरीका भी अलग होना चाहिए, क्योंकि आप अलौकिक है, आपका हर कार्य असाधारण है। तो जब आप समाचार सुनते हैं कि कुछ आत्माएं चली गई, तो आपको ख्याल आना चाहिए कि वो बिना संदेश के चली गई, बिना संदेश लिए चली गई। कम से कम उन्हें संदेश तो मिल जाता। और जो आत्माएं गई नहीं लेकिन दुखी हैं, उनके लिए आपको क्या संकल्प करना है? उनको शांति मिले। अगर वो भटक रही हैं तो उनको ठिकाना मिले। बेघर हैं तो उन्हें घर मिले, उन्हें प्यार मिले, शरण मिले, सहयोग मिले। तो आप अपनी शुभ चिंतन की किरणें उन आत्माओं तक भेजो। एक स्थान पर बैठे आप अपनी किरणों से दूर दूर तक आत्माओं को सहयोग दे सकते हो, क्योंकि आप पूर्वज जड़ में बैठे हो। तो जड़ का काम क्या है? जड़ रहती तो गुप्त दिखाई नहीं देती, तना दिखाई देता, लेकिन जड़ अंदर ही अंदर भोजन तैयार करती है और तने के माध्यम से एक एक शाखा पत्ता सब तक पहुंचाती। इसलिए तो कहते हैं पेड़ का तना हो लेकिन जड़ चली जाए तो पेड़ रहेगा नहीं, पर तना बेशक चला जाए, जड़ हो तो वो दोबारा फिर खड़ा हो जाएगा। तो सारी ताकत तो जड़ में होती, बीज के साथ सीधा कनेक्शन जड़ का होता है। तो बीज रूप शिव बाबे की सारी शक्तियां हम बच्चों को मिल रही हैं, तो हमारा काम क्या है? उन आत्माओं तक शुभ चिंतन की किरणें पहुंचाना। वो ढूंढ रही हैं कि कोई तो मिले, लेकिन दुनिया में कोई भी नहीं है जो कोई किसी की मदद कर सके। सब खाली हाथ, एक खाली हाथ वाला दूसरे के हाथों को कैसे भरेगा? प्यारे बाबा ने भर्तू हाथ तो हमें बनाया। तो ऐसे समाचार सुन करके हमें अपनी शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं उन आत्माओं तक भेजनी है, वो कहीं भी हो। हम शुभ चिंतक क्यों बने? क्योंकि हमारा बाबा सबका शुभ चिंतक। तो जैसा पिता वैसे बच्चे। दुनिया में तो अशुद्धि का राज्य है और बाबा शुद्धि का सागर है। बाबा के संस्कार क्या है? शुभ भावनाधारी, शुभ कामनाधारी, विश्व कल्याणकारी। तो हम बच्चों के संस्कार भी वैसे ही होने चाहिए। फॉलो फादर है ना, बच्चा तो वैसे भी बाप की नकल करता है। मुझे याद है मैं एक बार एक गांव में गई थी, तो एक छोटा सा बच्चा था 6-7 साल का, उसने एक गत्ते का जो बॉक्स होता है उसकी गाड़ी बना रखी थी और उस गाड़ी में ऐसे ही कोई कॉटन मैली सी कहीं गिरी हुई मिल गई होगी वो भर रखी थी और उसको लिए जा रहा था। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया, मैंने कहा बच्ची कहाँ जा रही हो? कहता है दिल्ली जा रहा हूं। मैंने कहा किस लिए? कहता है ये कॉटन सेल करके आऊंगा। तो मुझे हंसी आ गई। उसकी माँ ने सुन लिया, वो पास में ही थी, वो भी हंसने लगी। कहती है बहन जी इसके पिताजी के पास बड़ी गाड़ी है और गांव में जो कपास पैदा होती है उसको गाड़ी में भर के वो रोज दिल्ली जाते हैं बेचने के लिए। तो अब बच्चा क्या करेगा? नकल तो करेगा ना। तो देखो छोटे से बच्चे ने बाप की कितनी अच्छी नकल की। हम तो बड़े बच्चे हैं तो हमें अपने बाप की नकल करनी चाहिए कि नहीं? इसलिए जैसा बाप वैसे बच्ची। तो हम सब सबके शुभचिंतक हैं, अपने आप के भी, सारे विश्व के भी, और ऐसी शुभचिंतक आत्माओं की निशानियां क्या क्या होंगी पहली निशानी तो ये है कि कैसी भी तमोगुणी आत्मा हो, नकारात्मक आत्मा हो, विरोधी आत्मा हो, जो सच्चा शुभ चिंतक है वो अपकारी पर भी उपकार करेगा, बदला नहीं लेगा, उस जैसा नहीं बनेगा, लेकिन वो यही सोचेगा कि मेरे पास जो शुभ का खजाना है इससे मैं इसका भी भला कर दूं। दूसरा, वो कभी किसी से घृणा नहीं करे। कोई कमजोर है, परवश है, तो वो जानता है कि कमजोर से अगर घृणा करेंगे तो और कमजोर हो जाएगा, उसे सजा देंगे तो भी और कमजोर हो जाएगा, परवश से भी अगर घृणा करेंगे तो वो और ज्यादा वशीभूत हो जाएगा। तो वो ऐसी आत्मा को मदद दे करके ऊंचा उठाएगा। ये है शुभ चिंतक की निशानी। जैसे रॉयल परिवार के जो लोग होते हैं, ऊंचे घरानों के जो लोग होते हैं, वो कभी भी नीची चीजों को, मिट्टी को नहीं छूते। ऐसे ही जो शुभ चिंतक आत्मा है वो कभी भी व्यर्थ चिंतन, पर चिंतन, नेगेटिव चिंतन को स्पर्श नहीं करेगी, बल्कि उसको पॉजिटिव में चेंज करके उसका फायदा उठाए। शुभ चिंतक आत्मा अगर किसी ने कोई गलत कर्म कर भी दिया तो ये नहीं कहेगी कि ये क्यों किया, क्यों 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 की लाइन नहीं लगाएगी, लेकिन वो ये सोचेगी कि अब इसका कल्याण कैसे हो। अब इसका समाधान कैसे हो, अब इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए। और अगर कोई कमजोर आत्मा उसके सामने है तो उसको वो कभी ये सर्टिफिकेट नहीं देगी कि ये तो है ही ऐसा, ये बदल नहीं सकता, ये आगे बढ़ नहीं सकता, ये ज्ञान सीख नहीं सकता, ये सुपात्र नहीं है। नहीं, ये शुभ चिंतक आत्मा के बोल और संकल्प नहीं है। वो हमेशा ना उम्मीदवार को भी उम्मीदवार बनाएगा। होपलेस केस में भी होप भरेगा, जिसे सब ठुकरा दें उसको भी अपनाएगा। और अपनी हिम्मत की टांगे दे करके उसे चलना और दौड़ना सिखाए, जैसे प्यारे बाबा ने किया। कितनी हिम्मतहीन आत्माएं बाबा के सामने आई और बाबा एक चट्टान की तरह अचल अडोल सहारा बन गए। तो उस हिम्मतहीन आत्मा में हिम्मत आ गई, वो आगे बढ़ पाई और आज वही आत्मा कितने विश्व कल्याण के कार्य कर रही। शुभ चिंतक आत्मा की नेचर बन जाती है शुभ देखना, शुभ सोचना, शुभ बोलना, अर्थात दृष्टि वृत्ति कृति नेचुरल शुभ हो जाती है। अभी तो वैसे भी दीपावली आ रही है और दीपावली पर हम लिखते हैं शुभ लाभ, अर्थात अगर हमारे मन में शुभ है तो लाभ ही लाभ है। पहले भीतर शुभ होना चाहिए तो बाहर के जगत में लाभ ही लाभ हो जाएगा। और हम ब्राह्मणों का तो सब कुछ शुभ है, जन्म भी शुभ है, भाग्य भी शुभ वेला का है, कर्म भी शुभ है, संबंध भी शुभ है, सब कुछ शुभ है। तो इसलिए हम तो हैं ही शुभ चिंतन करने वाले, सबका भला सोचने वाले। शुभ चिंतन हमारी नेचुरल नेचर। जिसकी नेचुरल नेचर होती है ना, वो प्ले अवश्य होती है, वो प्रकट जरूर होती है, छिपाने से छिपती नहीं। अब मुझे एक बात याद आ रही है, एक बार एक महात्मा जी थे एकदम शुभ चिंतन वाले, नेगेटिव सोचते ही नहीं थे, चेहरे पे बड़ा तेज था और हमेशा मुस्कुराते रहते थे। तो एक बार उनका एक गांव में आना हुआ, गांव के लोग तो बड़े खुश हुए, उसके स्वागत की बड़ी तैयारियां की। पर उसी गांव में कुछ ऐसे लोग भी थे चंचल प्रवृत्ति के, या जिसको कहें खाली बैठे, जिन्हें कोई काम नहीं, तो खाली दिमाग शैतान का घर। तो उन्होंने योजना बनाई कि चलो थोड़ा महात्मा जी का मजाक उड़ाएंगे, मजा आएगा, महात्मा जी को थोड़ा गुस्सा दिलाएंगे, मजा आएगा, तो क्या किया जाए इसके लिए? तो योजना बनाई कि सबके घरों के जो फटे पुराने जूते हैं उनको एक रस्सी में पिरोया जाए और खूब लंबी माला बनाई जाए, और महात्मा जी जब गांव में प्रवेश करें तो उनके गले में डाल दी जाए। मजा आएगा, उनको गुस्सा आएगा, हम खूब तालियां बजा के हंसेंगे। तो महात्मा जी आए एकदम तेजस्वी, एकदम निर्मल, और माताओं बहनों ने तो उनकी आरती उतारी, लोगों ने उन्हें बैठने के लिए आसन दिया, और जैसे ही वो आसन पे बैठे तो जिन्होंने मीटिंग की थी उनमें से एक आया और एकदम उसके गले में वो माला डाल दी। महात्मा जी तो पहले की तरह ही मुस्कुराते रहे, सबको प्यार से निहारते रहे। तुम लोगों ने सोचा कि इसको गुस्सा तो आया नहीं, इस पे कोई असर ही नहीं पड़ा। तो एक ने कहा कि इसके कान में जाके इसको बताओ। तो एक जाके कहता है, महात्मा जी आपको पता है, देखो आपको ये जूतों की माला पड़ी है। महात्मा जी ने ऐसे हाँ हाँ बोला और उसके बाद फिर हंसते रहे, फिर समाचार सुनाते रहे, मैं कहाँ कहाँ गया, मैंने क्या क्या देखा। उन्होंने कहा गुस्सा आया ही नहीं, क्या बात है। और थोड़ी देर में उनको अपने प्रश्न का उत्तर भी मिल गया। महात्मा जी ने जब समाचार सुनाया तो चूंकि वो तो शुभ देखने वाले थे, हर चीज में शुभ देखते थे, शुभ सोचते थे, तो उन्होंने कहा देखो मैंने कितने गांवों का दौरा किया, भारत के बहुत गांव देखे, एक गांव ना मिले दूसरे से। एक गांव में मैं गया तो वहां लोगों ने मुझे मोतियों का हार पहनाया, मैं समझ गया कि ये सुनारों का गांव। फिर मैं एक और गांव में गया, वहां लोगों ने मुझे फूलों का हार पहनाया, मैं समझ गया कि ये मालियों का गांव है। और देखो ये गांव अलग प्रकार का है, यहां मुझे जूतों का हार पहनाया, मैं समझ गया ये मोचियों का गांव है। तो उसको हर बात में से शुभ उठाना था। हमें गुस्सा का बात था जब हम देह अभिमान में होते हैं, जब हमें मान शान की भूख होती है, जब हमारे अंदर ईगो होता है, ईगो को चोट लगती है तो गुस्सा आता है, पर जब ईगो है ही नहीं तो चोट किसको लगेगी। जब मान शान की भूख है ही नहीं तो गुस्सा कैसे आएगा। तो निरंतर शुभ चिंतन करना मतलब माया को विदाई देना। माया का कोई भी रूप हमारे सामने आकर के हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकता, हमारी खुशी को छीन नहीं सकता, हमारी शक्ति को जाया नहीं कर सकता, क्योंकि हमें आदत पड़ गई बुराई में भी अच्छाई देखने की। दुनिया कितनी भी बुरी है लेकिन ढूंढने वाले को बुरे में भी अच्छा मिल ही सकता है। कहीं 99 बातें गलत हो वहां भी एक बात तो अच्छी जरूर मिलेगी। कहते ना बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही टाइम बताती। कोई दुनिया में पेड़ ऐसा नहीं जिसमें औषधि ना हो, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसमें गुण ना हो, और कोई घटना ऐसी नहीं जो हमें पाठ ना सिखाए। बाबा कहते हैं जो भी बात सामने आती है उसको बात मत समझो, उसको शिक्षक समझो। वो आपको 2 पाठ पढ़ाने आई है, एक सहन शक्ति और एक सामना करने की शक्ति। आप पाठ पढ़ लो और उस घटना का थैंक्स करो, कि तुम हमारी शिक्षक बन के आई और हमको पढ़ा के चली गई। तो जीवन में घटनाएं आएंगी, आपको पाठ पढ़ाएंगी और आप ऐसे ही तो पढ़ते पढ़ते परफेक्ट बनेंगी। घटनाएं घटे ही ना, आपको पाठ पढ़ने को ही ना मिले तो परफेक्ट कैसे बनेंगे। तो आज हम तीन दृढ़ संकल्प करेंगे, सदा शुभ चिंतन करने के लिए और सर्व का शुभ चिंतक बनने के लिए। पहला संकल्प, सदा अन्य प्रकार की सभी भावनाओं का त्याग करके हरेक आत्मा के लिए शुभ चिंतक मणि बनेंगे, उसकी चिंताओं को मिटाने वाली मणि बनेंगे। ये पहला संकल्प। दूसरा संकल्प, सदा हर आत्मा को अपने से भी आगे बढ़ाने के सहयोगी बनेंगे। और तीसरा संकल्प, व्यर्थ चिंतन पर चिंतन, बीती बातों का चिंतन, इन सब को बिंदी लगाकर, बिंदी बनकर सर्व आत्माओं के प्रति स्नेह की, सहयोग की और कल्याण की किरणें प्रवाहित करेंगे। सबको इन किरणों के माध्यम से सकाश देंगे। ओम शांति।
जो बहे जगत के वास्ते हम बने।